पेश है आज के मुख्य समाचार वैशाली जैन के साथ। नोवाक जोकोविक अपील हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया से लौटे, नहीं रहे भारत के मशहूर कथक नर्तक बिरजू महाराज। और अफ्रीका कप में अल्जीरिया को मिली इक्वेटोरियल गिनी के हाथों करारी शिकस्त। और अब समाचार विस्तार से। टेनिस दिग्गज नोवाक जोकोविक फेडरल अदालत में अपनी वीजा की अपील हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया से लौट गए हैं। इसी के साथ देश में प्रवेश के लिए लागू होने वाले कोरोना नियमों के इर्द गिर्द उठा बवाल भी शांत होता दिख रहा है। 3 जजों की बेंच ने संयुक्त रूप से श्री जोकोविक की अपील को खारिज किया था। इसी के साथ सर्बियाई खिलाड़ी के 21वां ग्रैंड स्लैम जीतने की सारी उम्मीदों पर भी पानी फिर गया था। जोकोविक का पहला मैच आज के लिए निर्धारित था। इस फैसले से उनके प्रशंसक और परिवारजन निराश हैं। सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच ने इस वीजा के रद्द किए जाने की निंदा की है, पर विदेश मंत्री मैरीज पेन का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया शुरू से ही अपने फैसले को लेकर साफ और पारदर्शी रहा है।
That we have transparent processes, that rules are rules, and there are not convenient exceptions for individuals in this case. These are very important matters of border protection, and they're matters that we take very seriously. Both Minister Andrews and Minister Hawke have worked very hard to ensure that the rules have been applied appropriately. In doing so, the Federal Court has affirmed that position.
श्री जोकोविक ने प्रवास मंत्री एलेक्स हॉक के वीजा रद्द करने के फैसले को फेडरल अदालत में चुनौती दी थी। मंत्री हॉक का मानना था कि श्री जोकोविक को ऑस्ट्रेलिया में खेलने देना सामाजिक व्यवस्था में उथल पुथल मचा सकता था और उनके यहाँ रहने से भयंकर कोरोना प्रकोप के बीच टीकाकरण के विरुद्ध भावनाएं और भी तीव्र हो सकती थीं। उधर प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने टोंगा राष्ट्र को हर संभव मदद और सहयोग देने का पूरा वादा किया है। प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के निकट स्थित टोंगा देश में सुनामी ने कहर बरपाया है। ऑस्ट्रेलिया टोंगा में स्थिति का ब्यौरा लेने के लिए एक P-8 प्लेन भेज रहा है। सुनामी का यह प्रकोप शनिवार को समुद्री तल पर हुए एक ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हुआ है, जिससे टोंगा में दूर संचार के सभी साधन बाधित हो गए हैं और यह आंकलन करना कठिन हो गया है कि बुनियादी ढांचे को कितना नुकसान हुआ है। श्री मॉरिसन ने 2GB रेडियो से बात करते हुए बताया कि दूरसंचार बाधित होने और राख के बादलों के चलते परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हो गई हैं।
There's been a lot of challenges there with the ash cloud and the disruption to communications, and so we're working together to get as much support to Tonga as we possibly can. And they're part of our Pacific family, beloved in our Pacific family, like all of those island nations that we're always there to support.
ग्राहक हितधिकारी Australian Competition and Consumer Commission यानी ACCC देश में रैपिड एंटीजन किटों की बढ़ती कीमतों को लेकर चिंतित है। कुछ मामलों में ACCC को शिकायत मिली है कि 2 टेस्ट किटों के लिए ऑनलाइन $500 तक वसूले जा रहे हैं और कन्वीनियंस दुकानों और पेट्रोल पंपों पर यही दाम $70 तक लगाया जा रहा है। हालांकि होलसेल के दाम की बबात करें तो एक टेस्ट की कीमत $3.95 से लेकर $11.45 के बीच ही है। ACCC अध्यक्ष रॉड सिम्स ने व्यवसायों से कहा है कि वे तुरंत इस बढ़ाए गए दाम का कारण साफ करें, नहीं तो ACCC अपनी कार्यवाही करेगा।
We have heard stories where people have gone to enormous lengths to get supplies for their consumers, and on those occasions, maybe higher pricing can be justified. So that's why we're writing out to people. That's why we're giving them a chance to urgently explain what they're doing and what justifies the pricing they're charging. And when we see that, we'll be taking action.
उधर न्यू साउथ वेल्स ने आज 29,504 नए स्थानीय रूप से अधिग्रहित कोरोना मामले दर्ज किए हैं। राज्य में आज 17 कोरोना संबंधी मृत्यु भी दर्ज की गई हैं। अस्पतालों में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। न्यू साउथ वेल्स में आज 2,776 कोरोना मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। स्वास्थ्य मंत्री ब्रैड हज़ार्ड का कहना है कि न्यू साउथ वेल्स हेल्थ के हवाले से सामने आए नए आंकड़े सुझाते हैं कि वे लोग जिनको टीका नहीं लगा है उनके कोरोना के चलते अस्पताल में भर्ती होने की संभावना 6 गुना अधिक और इन्हीं लोगों की ICU तक पहुंचने की संभावना 13 गुना तक अधिक हो जाती है।
That means you are requiring the assistance of the health staff who are already exhausted. Can I just say to those people who have chosen not to get vaccinated, it's time to give a damn about someone other than yourself. Give a damn about your community, your family, and most particularly the health staff across New South Wales who you expect to be looking after you if and when you end up in our hospital system.
न्यू साउथ वेल्स हेल्थ का कहना है कि पैथोलॉजी से सामने आए आंकड़े दर्शाते हैं कि पिछले दो दिन में लिए गए जांच नमूनों में से 95% तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले हैं। दूसरी तरफ विक्टोरिया ने आज 22,000 से अधिक नए कोरोना मामले दर्ज किए हैं। राज्य में 6 कोरोना संबंधी मृत्यु भी दर्ज की गई हैं। इसी के साथ विक्टोरिया में अनिवार्य कर्मचारियों और स्वास्थ्य के नज़रिए से जोखिम में लोगों को रैपिड एंटीजन टेस्ट किट बांटनी भी शुरू कर दी गई है। सामने आए मामलों में करीब 12,000 मामले PCR जांच में और 10,000 से ज़्यादा मामले रैपिड एंटीजन टेस्टिंग में सामने आए हैं। इसी के साथ राज्य में 2,45,040 सक्रिय कोरोना मामले हो गए हैं और 1,229 कोरोना मरीज अस्पताल में हैं। उधर क्वींसलैंड में भी अस्पताल में होने वाली कोरोना भर्तियां बढ़ रही हैं। बीते 24 घंटे में 32 कोरोना मरीज अस्पताल पहुंचे हैं। हालांकि गहन चिकित्सा केंद्र में इस तरह की बढ़त नहीं देखी जा रही है, फिर भी मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जॉन जेराट चिंतित हैं कि स्वास्थ्य के नज़रिए से जोखिम में लोग अपनी बूस्टर खुराक नहीं ले रहे हैं।
If you are unvaccinated in Queensland, you are 24 times more likely to be admitted to a Queensland intensive care unit than someone who is triple vaxxed.
यह तब आता है जब राज्य में 7 और मृत्यु दर्ज की गई हैं। उधर तस्मानिया में आज 1,037 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से अधिकांश मामले रैपिड एंटीजन टेस्ट से ही सामने आए हैं। राज्य में 7 कोरोना मरीज अस्पताल में हैं, जिनमें से 1 गहन चिकित्सा केंद्र में देखभाल पा रहे हैं। राष्ट्रीय यूनियन नेता आज एक आपातकालीन मीटिंग कर ये तय करेंगे कि कामगारों को काम की जगह पर सुरक्षित रखते हुए मौजूदा स्टाफ की कमी से कैसे निपटा जाए। इस मीटिंग में सभी यूनियन अपनी बात सामने रखेंगे और तय किया जाएगा कि मौजूदा ओमिक्रॉन वेरिएंट के इस प्रकोप को स्वास्थ्य सलाह के अनुसार कैसे संभालना है। यह तब आता है जब यूनियन नेता फेडरल सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि वे कामगारों को त्वरित सहयोग, मुफ्त रैपिड एंटीजन टेस्ट किटें, निकट संपर्क की साफ परिभाषा और उन व्यवसायों और कामगारों को जो स्टाफिंग की समस्या से जूझ रहे हैं आर्थिक सहयोग प्रदान करें। कोषाध्यक्ष जॉर्ज फ्राइडनबर्ग का कहना है कि कोरोना काल में ऑस्ट्रेलिया की वित्तीय नीति की प्रामाणिकता को दर्शाती एक नई रिपोर्ट सामने आई है, लेकिन लेबर का कहना है कि अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र पर ध्यान दिया गया होता तो ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था और मजबूत होती। डेलॉयट एक्सिस इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्री क्रिस रिचर्डसन को उम्मीद है कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरियंट के प्रकोप और ढीली पड़ती चीनी अर्थव्यवस्था के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया का वित्तीय विकास 2022 में औसत से ऊपर रहेगा। इसी बीच बिजनेस न्यू साउथ वेल्स के एक सर्वेक्षण में ये पाया गया है कि राज्य में व्यवसायों का भरोसा नए कोरोना प्रकोप के बाद से कम हुआ है। उधर नेशनल्स पार्टी ने साउथ ऑस्ट्रेलिया के आगामी चुनावों के लिए डाक द्वारा वोटिंग की व्यवस्था के विस्तार की मांग की है। ऐसा सभी चुनाव कर्मियों और मतदाताओं में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए कहा गया है। पार्टी के प्रमुख उम्मीदवार गैरी जोहानसन का कहना है कि साउथ ऑस्ट्रेलिया निवासियों का स्वास्थ्य सर्वोपरि है। साउथ ऑस्ट्रेलिया में 19 मार्च से चुनाव होने हैं। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पूर्व यूक्रेनियाई राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको का कहना है कि वे अब अपने देश लौटकर गद्दारी के आरोपों का सामना करेंगे। उनका कहना है कि उन पर ये मामला राजनीतिक साजिश है। एक अपील में कहा गया है कि श्री पोरोशेंको कोयले की एक बड़ी दलाली का हिस्सा थे, जिससे रूस समर्थित अलगाववादियों की 2014-15 में मदद की गई थी। ये श्री पोरोशेंको के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के हाथों हार के बाद उनके खिलाफ लगने वाले आरोपों की कड़ी में सबसे नया आरोप है। ये आरोप तब लगते हैं जब यूक्रेन और रूस के बॉर्डर पर फिर एक बार मॉस्को की ताकतें एकत्रित होने लगी हैं। और अब खबरें भारत से। देश के मशहूर कथक नर्तक और पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित बिरजू महाराज का हृदय गति रुकने से निधन हो गया है। वे 83 साल के थे। उन्होंने दिल्ली स्थित आवास में अंतिम सांस ली। रविवार और सोमवार की दरमियानी रात को उन्हें हार्ट अटैक आया था। उनके पोते स्वरांश मिश्र ने सोशल मीडिया के जरिए महाराज जी के निधन की सूचना दी। लखनऊ घराने से ताल्लुक रखने वाले बिरजू महाराज का असली नाम ब्रजमोहन मिश्रा था। उनका जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ था और लोग उन्हें सम्मान से पंडित जी या महाराज जी कहते थे। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक पंडित बिरजू महाराज रविवार और सोमवार की दरमियानी रात करीब 12 बजे तक अपने नाती पोतों के साथ अंताक्षरी खेल रहे थे। अंताक्षरी खेलते खेलते अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और वे बेहोश हो गए। उन्हें दिल्ली के साकेत अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। भारत में कोरोना के मामलों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। देश में बीते 24 घंटों में 258,079 मामले दर्ज किए गए हैं। दैनिक मामलों में कल के मुकाबले 4% की कमी दर्ज की गई है। देश में कल कोरोना के 271,000 से ज़्यादा मामले सामने आए थे। साथ ही देश में पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 8,209 हो गई है। और अब डॉलर का हाल। आज यानी सोमवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 53.49 रुपये और एक अमरीकी डॉलर की तुलना में कीमत 72 सेंट थी। और अब खबरें खेल के मैदान से। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस में अपनी दावेदारी बचा रही अल्जीरिया को इक्वेटोरियल गिनी के हाथों करारी शिकस्त मिली है। ये अल्जीरिया के प्रशंसकों के लिए एक बड़े धक्के के रूप में सामने आया है। दूसरी तरफ दोनों ही आइवरी कोस्ट और अल्जीरिया के मैच ड्रॉ रहे। इसी के साथ अल्जीरिया ग्रुप ई में अब सबसे नीचे पहुँच गया है। उसका अगला मुकाबला अब 2 बार विजेता आइवरी कोस्ट से होगा। और अंत में एक नज़र कल यानी मंगलवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल तेज धूप के साथ भयंकर गर्मी की आशंका है। अधिकतम तापमान 38 जबकि न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में कल धूप छांव का मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान 25 जबकि न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में भी कल बादल छाए रहेंगे। यहां अधिकतम तापमान 21 जबकि न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। देश की राजधानी कैनबरा में हल्की बरसात की उम्मीद है। यहां अधिकतम तापमान 24 जबकि न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। में कल बरसात ही बरसात है। अधिकतम तापमान 27 जबकि न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। ब्रिस्बेन में कल बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 31 जबकि न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस का अनुमान है। डार्विन में कल बरसात के साथ तेज तूफान की आशंका है। अधिकतम तापमान 32 जबकि न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल धूप छांव का मौसम रहेगा। दिल्ली का अधिकतम तापमान 18 जबकि न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। समाचार में आज इतना ही। नमस्कार।